हम लोग भागवतम तीसरा स्कंद 11 अध्याय के 28वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। तमो मात्राम उपादाय प्रति समृद्ध विक्रमः कालेनानुगताशेष आस्ते तुष्णिम दिनात्यये। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। यह श्लोक ब्रह्मा की रात्रि की व्याख्या है, जो प्रकृति के तमोगुण के शुद्र अंश के संपर्क में काल के प्रभाव का परिणाम है। तीनों लोकों का प्रलय तमस के अवतार रुद्र द्वारा लाया जाता है, जो नित्य काल की उस अग्नि के द्वारा प्रदर्शित होता है जो तीनों लोकों में प्रज्वलित रहती है। ये तीनों लोक भूप वह तथा स्व, पाताल मृत तथा स्वर्ग कहलाते हैं। असंख्य जीव उस प्रलय में लीन होते हैं जो परमेश्वर की शक्ति के दृश्य पर पटाक्षेप जैसी प्रतीत होती है और इस तरह हर वस्तु मौन हो जाती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्व पदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। तो यहाँ पर विदुर और मैत्रेय जी का संवाद चल रहा है और इस 11वें अध्याय में तीसरे स्कंद के विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से काल के बारे में, है ना। तो मैत्रेय जी ने उनको काल के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि सबकी आयु 100 वर्ष की होती है लेकिन घड़ी अलग चल रही है। किसी का 100 वर्ष हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ घंटों में भी ख़त्म हो सकता है, किसी के 100 वर्ष हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से लाखों वर्ष भी हो सकती है, है ना। जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का दिन जो है 12 घंटे, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कितने वर्ष है, हाँ 432 करोड़ साल है। और इतने ही उनकी रात है, 432 करोड़ साल की रात है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो है 864 करोड़ साल है एक दिन। ऐसे एक दिन वो 100 साल तक जीते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि एक क्षण क्या होता है, लव क्या होता है, परार्ध क्या है, प्रहर क्या है, वर्ष क्या है, ये सारा इसमें व्याख्या है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम, हाँ, लेकिन ये समझ लेना पर्याप्त होगा कि जो काल है वो भगवान का एक रूप है ना, जो काल है भगवान का रूप है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में, पाताल में इस तरह से चल रहा है। तो 16वें श्लोक में विदुर जी ने कहा कि अच्छा चलो अब आप मुझे ये बताओ कि जो जो जब आंशिक प्रलय होती है तो कौन से लोग हैं जो इससे प्रभावित नहीं होते, है ना? जब आंशिक प्रलय होती है, जब स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोग नष्ट हो जाते हैं, तो क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो बचे रहते हैं, है ना? तो आप मुझे बताओ, आप मुझे क्यों बताने के लिए सक्षम हो? अगले श्लोक में विदुर जी बता रहे हैं कि आप इसलिए बताने में सक्षम हो क्योंकि आप देख सकते हो, है ना? आपके पास वो दृष्टि है कि आप देख सकते हो कैसे सारी चीजें चल रही हैं। हाँ, मैं नहीं देख पा रहा लेकिन आप देख सकते हो, तो प्लीज आप मुझे बताएं कि पूरा कैसे चल रहा है, कैसे मूवमेंट हो रही है, कैसे चीजें हिल रही हैं। हाँ, ये जो वाक्य है विदुर जी का, इसमें बहुत श्रद्धा सम्मिलित है, श्रद्धा का समावेश है, है ना? उनको पूरी श्रद्धा है कि मैत्रेय जी देख सकते हैं, ये बड़ी बात है, है ना? कि गुरु पे ये फेथ होना कि इनमें ताकत है। हाँ, मैं क्षुद्र जीव हूँ, मुझ में ताकत नहीं है, लेकिन गुरु में ताकत है। हाँ, और क्योंकि गुरु में ताकत है वो मुझे बताएंगे। हाँ, और वो जो भी बताएंगे वो सच, ट्रुथ, सत्य बताएंगे, गलत बात नहीं बताएंगे। ये श्रद्धा है शिष्य की गुरु में, है ना? ये श्रद्धा है तो वार्तालाप करने का उद्देश्य है, नहीं तो कोई उद्देश्य नहीं है वार्तालाप करने का। नहीं, अगर किसी व्यक्ति में फेथ ही नहीं है, वो कुछ भी बोलेगा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? जैसे मैंने अपने बच्चे से बात कर रहा था, तो मैंने उसको बोला कि आप अगर टाइम से खाना नहीं खाओगे तो अल्सर हो जाएगा। तो ऐसे थोड़े ना होता है, बच्चे हैं ना, वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज को, ऐसे थोड़े ना होता है, अल्सर क्यों हो जाएगा? तो मैंने कहा आपको पता है अल्सर का मतलब क्या है? अल्सर का मतलब है पेट में जख्म होना। तो ये खाना ना खाने से अल्सर कैसे हो जाएगा? अरे, खाना ना खाने से अल्सर यूं होगा कि आपका जो शरीर है वो डाइजेस्टिव, जो हाजमे के जो लिक्विड है, तरल पदार्थ है, वो लगातार छोड़ रहा है, वो शरीर में लगातार निकल रहे हैं। वो अगर उनको खाने की वस्तु नहीं मिलेगी, वो अंतड़ियों को खाना शुरू कर देंगे। उनका काम है डाइजेस्ट करना, जो भी सामने चीज आएगी, रसायन है, रसायन काम करेगा, खाने पे नहीं काम करेगा, जो सामने चीज आएगी उस पर काम करेगा, उससे अल्सर हो जाता है। अच्छा, मैं चेक करूंगा इंटरनेट पे, गूगल पे, गूगल पे चेक कर लो भैया। लेकिन अगर फेथ होगा, हाँ, अगर फेथ होगा तो फौरन अगर बोला कि देखो अगर आप ठीक से अगर नहीं टाइम से खाओगे, अल्सर हो जाएगा, पेट में जख्म हो जाएंगे। अच्छा, पेट में जख्म हो जाएंगे, नहीं नहीं मैं ठीक से खाऊंगा, बात खत्म हो गई। नहीं, टाइम बच गया, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत खत्म हो गई, है ना? रिसर्च करने की जरूरत खत्म हो गई, है ना? लेकिन हम बोलेंगे, कुछ लोग बोल सकते हैं कि तो अंधविश्वास हो गया, जो बोला मान लिया, है ना? लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है एक्चुअली में। अंधविश्वास और श्रद्धा में फर्क होता है। जब आप गुरु के साथ व्यवहार करते हैं, किसी वरिष्ठ वैष्णव के साथ व्यवहार करते हैं, तो पहले आप जांचते हैं कि भाई ये बंदा बात सही भी करता है नहीं करता, नहीं ये ठीक बोलता है नहीं बोलता, मतलब ऐसा तो नहीं मनगढ़ंत बोल रहा है वो, जो भी बोल रहा है हम चेक करते हैं कि कहाँ पे लिखा है ना। हम बार बार अगर कहीं पे विरोधाभास आ जाता है तो हम पूछते हैं, देखो जी वहाँ पे तो ऐसा लिखा था आप ऐसा कह रहे हो, तो कैसे बात बनेगी। तो उस बात का वो समाधान करेगा गुरु जो, और यहाँ वरिष्ठ वैष्णव है। तो धीरे धीरे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये मतलब बात जेन्युइन बात ही करते हैं, है ना। तो उसका नाम है श्रद्धा। एक बार वो आ गए, उसके बाद में फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहती, फिर वो बोला ठीक ही बोल रहे होंगे, है ना। और फिर जब आप भी अपना अध्ययन करेंगे धीरे धीरे समय के अनुसार चीज़ें सामने आ जाती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि गुरु से सुने जा रहे हैं, दूसरे वैष्णव से सुने जा रहे हैं, खुद पढ़ ही नहीं रहे। आप पढ़ेंगे सामने चीज़ें अपने आप आती चली जाएंगी, भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितमृत कहीं ना कहीं उसका उल्लेख मिल जाएगा उसका, है ना। तो जब वो मिल जाएगा तो श्रद्धा और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, है ना। तो उससे टाइम बचता है, आप जल्दी प्रगति करते हो। तो इसीलिए कहते हैं जिसकी गुरु में श्रद्धा होती है, जिसकी शास्त्र में श्रद्धा होती है, वो जो भक्त है वो तेजी से प्रगति करता है। जो संशय है, संशय आत्मा जो संशय करता रहेगा, हाँ संशय आत्मा विनश्यति, वो ज़्यादा प्रोग्रेस तेजी से नहीं कर पाता, क्योंकि वो इसी में लगा रहता है, यार सही बोला था नहीं बोला था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। सो यहाँ पर जो हम अब 26वें 27वें और 28वें श्लोक की अगर हम बात करें, तो मैत्रेय जी कह रहे हैं कि देखो सकाम कर्मों के अनुसार जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता रहता है, है ना। भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है ना। और भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं कारणम गुण संकस्य सद असद योनि जन्मसु, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, क्यों कैसे। कारणम गुण संकस्य, उसका कारण है कि हम किस तरह के गुण का संग कर रहे हैं। हम सत्वगुण का संग कर रहे हैं, रजोगुण का कर रहे हैं, या तमोगुण का संग कर रहे हैं। जैसे गुण का संग करेंगे वैसी हमें आगे गति प्राप्त होगी। हाँ सत्वस्थम जो ऊर्ध्व जाएगा, हाँ जो सत्व में स्थित है ऊपर जाएगा, जो रजोगुण में स्थित है वो मृत्युलोक पर रहेगा, जो तमोगुण में है वो पाताल लोक या पशु योनियों इत्यादि में जाएगा। तो ये भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, 14वें अध्याय में भी कर रहे हैं, फिर जाकर 18वें अध्याय में भी भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को। तो जब हर चीज गुणों के प्रभाव से ही हो रही है, तो फिर और हम उससे बंधे हुए हैं गुणों से, तो फिर बदलेगा कैसे। मैं तो मतलब वशीभूत हूं, प्रभाव में हूं। सपोज मैं तमोगुण के प्रभाव में हूं, है सपोज क्या मतलब है ही है, चलो है ना। तो तमोगुण के प्रभाव में है और मैं बिल्कुल उसमें डूबा हुआ हूं, जकड़ा हुआ हूं, तो इससे बाहर कैसे निकलूंगा मैं। नहीं मतलब बाहर निकलने के लिए कुछ एक कोई धक्का लगाएगा, कुछ यहाँ खींचेगा या धक्का लगाएगा, कुछ तो होगा, नहीं तो हम तो दलदल में फंसे हुए हैं, तो कैसे बाहर निकलेंगे। जो गुण के अंदर हम रहेंगे ऊपर नीचे चलते रहेंगे, नहीं। तो इसका उत्तर है कि हम बाहर निकल सकते हैं संग के द्वारा। हम जिन लोगों का संग करते हैं उन लोगों के संग के द्वारा हम अपने गुणों का जो प्रभाव है, गुणों का जो स्वरूप है, उसको बदल सकते हैं, है ना। जैसे शराबी है वो शराबियों के साथ रहेगा और ज़्यादा रंग चढ़ता चला जाएगा, लेकिन वही शराबी नशेड़ी व्यक्ति अगर साधु का संग करेगा तो धीरे धीरे वो उस तमोगुणी प्रभाव से बाहर निकल आएगा और सतोगुण में स्थित हो जाएगा। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, प्रभुपाद गए और बावेरी और सारे इलाकों के जितने हिप्पी नशेड़ी थे, हाँ, उनका उन्होंने प्रभुपाद का संग किया, सारे तमोगुण में थे, लेकिन संग प्रभुपाद के संग के माध्यम से वो उस तमोगुण को उन्होंने हटाने में सक्षम हो गए, तमोगुण हटा दिया और सतोगुण का संग किया तो सतोगुण में आकर स्थित हो गए, है ना। कारणम गुण संगस्य, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते कि गुणों से बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं हम अच्छे लोगों का संग करके, भक्तों का, गुरु का, वैष्णव का संग करके हम उस तमोगुण और रजोगुण से हम बाहर निकल सकते हैं और हम भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, अपनी गति हम निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी गति निर्धारित है, ऐसा होना ही है, ऐसा नहीं है। हम बहुत कुछ निर्धारित है लेकिन उससे भी ज़्यादा अभी निर्धारित होना बाकी है। वो हमारे जो हम अभी काम कर रहे हैं, जैसा हम अभी व्यवहार कर रहे हैं, उससे निश्चित होगा वो। तो अगर हम अच्छे लोगों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो हम उससे बाहर निकल आएंगे। और मैत्रेय जी कह रहे हैं कि जब प्रलय होती है, ये आंशिक प्रलय की बात है कि ये ब्रह्मा जी का दिन अंत होने की बात चल रही है, है ना। मुख्य रूप से दो प्रलय हैं, वैसे तो तीन चार प्रलय बोलते हैं, जब आप सुषुप्तावस्था में, वो भी एक प्रलय है, होश ही नहीं है, क्या हो रहा है। नहीं, हमारी जो ये कोशिकाएं हैं, सेल्स, ये भी मर रही हैं हर क्षण, नहीं, शरीर बदल रहा है ना, ये भी प्रलय है। दूसरी प्रलय कौन सी है, जब मृत्यु हो जाती है ना। तो मृत्यु होने से सिर्फ आप ही को फर्क पड़ा, बाकी सब चीजें तो चल रही हैं, नहीं। तीसरी प्रलय है आंशिक प्रलय। आंशिक प्रलय मतलब जो भू भूर स्व, ये तीन लोग नष्ट हो गए, ऊपर के लोग बचे रहते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इन तीन लोकों में रह रहे होते हैं, जो कि उन्नत भक्त होते हैं, जैसे सप्तऋषि वगैरह हैं, वो कई बार इन लोकों में होते हैं। लेकिन जब रुद्र के प्रभाव से शिवजी जब तांडव करते हैं ना, नाचते हैं डमरू बजा के, तो उस समय जो आग की लपटें आती हैं, वो आग की लपटों का जो उद्भव है, जो उसका जो आग की लपटें प्रकट हो रही हैं, वो संकर्षण से प्रकट हो रही है, भागवतम में वर्णन है उसका दूसरे स्कंद में। तो जो शिव जी हैं, रुद्र हैं, वो माध्यम है जिनके द्वारा ये सब हो रहा है, लेकिन जो स्रोत है वो संकर्षण है, है ना। सो जब आग की लपटें आती हैं और 36,000 साल तक आग की लपटें फैली रहती हैं चारों तरफ, है ना, तो इतनी आंच होती है कि जो सप्तऋषि वगैरह जो जा सकते हैं ऊपर के लोकों में, वो जन लोक वगैरह लोकों में, ब्रह्म लोक इत्यादि में चले जाते हैं। हाँ, फिर 36,000 साल तक पानी पानी होता है, हाँ, चारों तरफ प्रलय का पानी होता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है ना। आगे इसका वर्णन आएगा। सो फिर पूर्ण जो पूरी प्रलय होती है, पूरा संसार खत्म हो गया है ना, तो उस समय ब्रह्मलोक इत्यादि जनलोक ये सब भी, तपलोक ये सब भी खत्म हो जाते हैं। हाँ, उस समय सिर्फ और सिर्फ वैकुंठ लोक ही बचते हैं बस, है ना। और ध्रुव लोक जो है वो भी वैकुंठ का ही हिस्सा है, भगवान ने विशेष उसको वो दर्जा दिया हुआ उसको। सो जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रलय होती है, चाहे वो आंशिक प्रलय हो चाहे पूर्ण प्रलय हो, जीव
निष्क्रिय अवस्था में मौन हो जाता है, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, कोई हरकत नहीं होती, और उस समय वो भगवान के शरीर में स्थित होता है ना। गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में स्थित होते हैं, है ना। फिर जब सृष्टि करनी होती है, कमल का फूल उगता है, और कमल के फूल में भागवतम में लिखा हुआ है कि सारे जितने भी जीव हैं उस कमल के फूल में निवेशित होते हैं, और सबसे पहले फटाक से ब्रह्मा जी निकलते हैं, अजा उनको बोलते हैं, नहीं क्योंकि उनका कोई भौतिक कारण नहीं है, भगवान ने उनको प्रकट किया। फिर अजा आगे सृष्टि करते हैं, आगे वर्णन आएगा उसका, है ना। सो हम बात कर रहे हैं, हम दो चीजों पे बात करेंगे यहाँ पर। पहली बात है कि जो जीव प्रलय के समय निष्क्रिय अवस्था में भगवान के शरीर में स्थित रहते हैं, तो जब जीव निष्क्रिय अवस्था में भगवान के शरीर में स्थित रहते ही हैं 432 करोड़ वर्ष तक, ब्रह्मा जी की एक रात जो है, और उसके बाद जब पूर्ण प्रलय हो जाती है तो लाखों करोड़ों करोड़ वर्ष तक वो भगवान के शरीर में निष्क्रिय अवस्था में स्थित रहते ही हैं। तो फिर जो निराकारवादी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, उनको अलग से ब्रह्म ज्योति में अलग से भगवान के शरीर में निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश होने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता की जरूर, क्या आवश्यकता है? नहीं, आप कुछ भी नहीं करो, भोग करो दबा कर, आपको मौका मिलेगा 432 करोड़ वर्ष भगवान के शरीर में रहने के लिए। तो इतनी ज्यादा तपस्या, नेति 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 और दुनिया भर का ड्रामा करने की क्या आवश्यकता है भगवान के शरीर में निष्क्रिय अवस्था में जाने के लिए? जो लोग ब्रह्म ज्योति में प्रवेश होते हैं कुछ करते थोड़े ना, वो पड़े रहते हैं ऐसे ही, नहीं तो वो काम तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, 432 करोड़ वर्ष तक पड़े ही रहोगे उसके अंदर, तो प्रयास करने की क्या आवश्यकता है उसके लिए, है ना। उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर किसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है? प्रयास करने की आवश्यकता है उस स्थिति को प्राप्त करना जहां पर आप कभी भी निष्क्रिय नहीं हो, है ना, जहां पर आपको बार बार जन्म और मृत्यु का सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को बोला 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म आगतः सर्गेपि नोपजायन्ते, सर्गेपि न उपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च, कि हे अर्जुन मैं अब तुम्हें वो नॉलेज देने लगा हूं, ऐसी नॉलेज देने लगा हूं, ऐसा ज्ञान देने लगा हूं, सर्गे अपि सर्गे भी नोपजायन्ते, सर्गे मतलब होता है सृष्टि, ऐसी नॉलेज दूंगा कि जब सृष्टि होगी तुम्हारा जन्म नहीं होगा, और क्या होगा प्रलय, और जब प्रलय होगी प्रलय न व्यथन्ति च, और जब प्रलय होगी तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम आराम से रहोगे। तो ये दो चीजें कहां पर संभव है? ये दो चीजें संभव है भगवत धाम के अंदर, जहां पर कि भौतिक जगत की तरह ना जन्म हो रहा है ना मृत्यु हो रही है, आप एक बार पहुंच गए बात खत्म हो गई, अब वहां पर ना फ्यूचर है ना पास्ट है, प्रेजेंट में सब कुछ चलेगा हर चीज, है ना, ना जन्म होगा ना मृत्यु होगी, वहां पर भगवान की सेवा में लगातार लगे रहो। तो वो क्या नॉलेज है, ऐसा क्या जान लें कि ना तो सृष्टि के समय हमारा जन्म हो और ना ही प्रलय के समय हमें कोई कष्ट हो, ना हम मरे। तो भगवान ने सबसे पहली बात ये बोली कि हे अर्जुन समझ लो मैं ही हूं सारी योनियों का, सभी जीवों का पिता। मैं ही हूं और कोई नहीं है। तो भगवान ने ये बात आखिर क्यों बोली, इतनी इस बात को बोलने का क्या मकसद है? इस बात को बोलने का मकसद यह है कि हे अर्जुन, तुम चिंता कर रहे हो धृतराष्ट्र की, तुम चिंता कर रहे हो द्रोणाचार्य कृपाचार्य इन सब की चिंता कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारे वरिष्ठ हैं, तुम्हारे पिता पितामह हैं, इनकी सेवा करना तुम्हारा फर्ज है। नहीं, ये जो भावना है जो तुम अपने परिवार में निवेशित कर रहे हो, अपने पिता पितामह में निवेशित कर रहे हो, ये भावना अच्छी है लेकिन गलत जगह लगा रहे हो। वो तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम्हारे माता पिता मैं हूं। अहम बीजा प्रद पिता, मैं हूं बीज देने वाला, मैं पिता हूं। और ये बात क्यों बोल रहे हैं भगवान? ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि देखो, जिस तरह अब तुम्हें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि पुत्र का क्या कर्तव्य है। तुम समझदार हो, तुम्हें पता है पुत्र का कर्तव्य है पिता की सेवा करना। तो तुम अपने इस भौतिक, इस शुक्र से संबंधित, इस शरीर से संबंधित पिता को पिता पितामह नहीं समझो। तुम ये जान लो कि मैं हूं, मेरे से तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम मेरी संतान हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपना पूरा ध्यान मेरी सेवा में लगाओ, है ना। अगर तुम अपना पूरा ध्यान मेरी सेवा में लगाओगे तो तुम्हें प्रलय और सर्ग सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। तुम पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकोगे, स्वतंत्र व्यवहार कर सकोगे, और तुम्हें ऐसी दृष्टि मिल जाएगी जैसे मैत्रेय ऋषि के पास है कि वो हर चीज को देख पा रहे हैं। इसी प्रकार आज तुम व्यथित हो रहे हो क्योंकि तुम्हें पूरी तुमने पूरा पूरी पिक्चर नहीं देखी है, पूरा पूरा जानकारी नहीं है तुम्हें। जब तुम्हें पूरी जानकारी हो जाएगी फिर तुम परेशान नहीं होगे, फिर तुम इस चीज को सोच के परेशान नहीं होगे कि उसको मारना पड़ रहा है मुझे, फिर तुम परेशान होगे कि मेरा तो कल्याण हो गया लेकिन वो अभी भी भौतिक जगत में फंसा हुआ है, इसका कल्याण कैसे होगा, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला कि हे भगवान, आप इन सब जीवों का कल्याण करो, है ना। वासुदेव दत्त ने बोला कि उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु को, सारे इनके जितने भी कर्म है मुझे दे दो, मैं भोग लूंगा, इन लोगों का कल्याण कर दो, है ना। तो जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थित होता है, जब व्यक्ति को भगवान से अपने संबंध की जानकारी हो जाती है, पहली बात वो निर्भय हो जाता है और दूसरी बात वो लोगों के मरने जीने से प्रभावित नहीं होता, तीसरी बात उसके मन में करुणा जागृत हो जाती है कि मेरा तो कल्याण हो गया लेकिन मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरा कल्याण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये बाकी लोगों का क्या होगा। और यही कारण है, इसी सोच के चलते प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया, नहीं, उग्र कर्म वाले देश में गए, 70 साल की आयु में हार्ट अटैक भी हो गए दो, फिर भी अपना जो, और वहां पहुंचने के बाद भी उनका वीजा एक्सपायर हो रहा था हर 6 महीने में, तो प्रभुपाद वापस आ सकते थे, फ्री पैसेज था उनके पास में, है ना। उनको बोला था कि आप जब भी वापस आना हमें बता देना, आपको एक कमरा दे देंगे, कैबिन जहाज के अंदर, वापस आ जाना, कोई परेशानी नहीं है, मालवाहक जहाज है जहाँ पे 50 लोग चल रहे हैं, क्या मन चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं। फिर भी हर ये सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी प्रभुपाद वापस नहीं गए। प्रभुपाद ने बोला इन लोगों का कल्याण कैसे होगा। और प्रभुपाद का अपने गुरु के आदेश पर फेथ था। उनके गुरु ने जब पहली दफा मिले भक्ति सिद्धांता सरस्वती, तो उनको बोला कि तुम उनको और नरेन उनको लेकर गया था। नहीं, आप प्रभुपाद लीला मृत में पढ़ो तो नरेंद्र जो व्यक्ति था वो प्रभुपाद को जबरदस्ती खींच के लेके गया था। प्रभुपाद जाना नहीं चाह रहे थे और दोनों ने प्रणाम किया भक्ति सिद्धांता सरस्वती को। तो भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर ने दोनों को ये बात बोली थी, दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों को उन्होंने बोला था कि तुम एजुकेटेड हो, तुम शिक्षित हो, जाओ जाके पाश्चात्य देशों में प्रचार करो। लेकिन कौन गया? प्रभुपाद गए, नरेन नहीं गए, क्योंकि प्रभुपाद को अपने गुरु के आदेश पर श्रद्धा थी, फेथ था। नरेन हालांकि ये जानता था कि ये बहुत अच्छे गुरु हैं, प्रमाणिक गुरु हैं, लेकिन उसको गुरु के आदेश में श्रद्धा नहीं थी, है ना। तो जिसकी गुरु के आदेश में जितनी अधिक श्रद्धा होगी, उतना ही अधिक तीव्रता से, उतने ही अधिक उत्साह से वो जाएगा और जगह जगह जाकर लोगों को पकड़ के जबरदस्ती उसको बोलेगा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि देखो प्लीज ये समझो कि कृष्ण भगवान है और भगवान के दिव्य नामों का जप करने से ही आपका परम कल्याण होगा। अगर ये काम हम कर लेंगे, अगर हम समझ लेंगे कि भगवान के हम भगवान की हम संतान हैं, तो जब सृष्टि होगी हमारा जन्म नहीं होगा, और जब प्रलय होगी जो कि भूतवा बार बार हो ही रही है, और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसी तरह है जैसे नाटक पे नाटक चल रहा है, पर्दा गिर गया है ना, पटाक्षेप हो गया, थोड़ी देर में फिर सीन चेंज हो जाएगा, पर्दा उठेगा, फिर ड्रामा शुरू हो जाएगा, फिर पर्दा गिरेगा, पर्दा उठेगा, पर्दा गिरेगा, पर्दा उठेगा, यही चल रहा है ना। ये जो ड्रामा है, इस ड्रामे को बंद करो, बाहर निकलो और असली दुनिया का आस्वादन करो, असली दुनिया को देखो, असली दुनिया में क्या हो रहा है। वो असली दुनिया में हम जा सकते हैं गुरु के जो शिक्षा है, गुरु के वचन, उसमें अगाध श्रद्धा रखकर हम ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।